سادگی انسان کی صلاحیتوں کو چھپا دیتی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملک کی دیش کی آزادی کے 75 years 75 سال آج پورے ہو رہے ہیں. اس موقع پر یہ بڑوڑا شہر میں پروگرام قاری انس صاحب مولانا سہیل اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے. صدر جمعیت علماء گجرات حضرت علامہ رفیق صاحب اللہ صحت کے ساتھ ان کے سائے کو امت پر باقی رکھے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ملک کی آزادی اور آزادی کے بعد اس وقت یہ جو منظر ہے ہمارے سامنے اسٹیج پر یہ سین اور منظر اگر باقی رہے تو ملک کی پرگتی اور ملک کے وکاس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس پر آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ دھرم کے بھائی بہن ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کے آزادی کی خوشی کو منا رہے ہیں. یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ اگر دیش میں قومی ایکتا رہی اور دیش کے اندر سب دھرم والوں کا آدر سنمان ان کے رائٹس ان کے حقوق برابر ملتے رہے تو ہمارا دیش بہت جلدی دنیا کی مہا ستا بن سکتا ہے. دیش کی پرگتی کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے قومی ایکتا اور دیش میں رہنے والے تمام دھرم کے لوگوں میں آپس کے اندر بھائی چارہ دیش بھاونا اور ایک دوسرے کا آپس میں سنمان یہ اس وقت ہمارے دیش کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ آزادی 190 سال کی قربانیوں کی برکت سے ملے ہیں. 1757 عیسوی میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کا زوردار مقابلہ کیا. 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا زوردار مقابلہ کیا. 1803 عیسوی میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے 4 سال کے بعد جب انگریز دلی پہنچ گئے تو اس وقت کے ایک بڑے عالم بڑے مولانا صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا کہ بھارت دیش انگریزوں کا غلام بن گیا ہے اور اس کو آزاد کرانا ہر دیش واسی کی جواب داری اور ذمہ داری بن گئی ہے. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب ایک داڑھی ٹوپی کفنی ازار پہننے والے مولانا یعنی دھرم گرو تھے. دلی میں آج بھی ان کی مسجد موجود ہے پرانی اسٹائل کی مسجد اس میں بیٹھ کر کے وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں پڑھاتے تھے, اور پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے 1803 عیسوی میں فتویٰ دیا کہ بھارت دیش غلام ہے. اس کے بعد 1857 کے موقع پر ایک اتہاس کار جن کا نام پنڈت نیوارام گپتا جی ہے, انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ 1857 کے اندر 55,000 مسلمان عالموں کو انگریزوں نے پھانسی کے اوپر لٹکایا تھا. دلی سے لے کر کے میرٹھ تک جتنے بھی جھاڑ راستے میں تھے اس پر پھانسی کا ماچڑا لگایا گیا, اور داڑھی ٹوپی کفنی ازار جو اس دیش کے وفاداروں کی نشانی تھی. آج لوگ پتہ نہیں اس یونیفارم کو دیکھ کر کے کیوں خاموش کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ انگریز یوں کہتے تھے کہ جس کی داڑھی ہے, سفید کرتا ہے, سر پہ ٹوپی ہے, اونچی ازار ہے, وہ سچا پکا نیشنلسٹ بھارتیہ ناگرک ہے, بھارت کی آزادی کا لڑوئیا ہے, فریڈم فائٹر ہے, اور جو بھی ایسا نظر آتا تھا اس کو انگریز پھانسی کے اوپر لٹکا دیتے تھے. ایک انگریز لیڈی لکھتی ہے اپنی بک کے اندر کہ انگریزوں نے 55,000 مولانا لوگوں کو دلی سے میرٹھ تک جب پھانسی دی تو حالت یہ ہوتی تھی کہ انگلش میں جو 8 ہوتا ہے, 8 ہوتا ہے, اس شکل میں ان کی لاش بن جاتی تھی, جھاڑ پر سوکھے سوکھے رہتے تھے, اور سوکھ کر کے دونوں پیر آپس میں نیچے گول ہو جاتے تھے, دونوں ہاتھ اوپر گول ہو جاتے تھے, اور انگریزی میں 8 کی طرح ان کی لاش ہو جاتی تھی. وہ بھی انگریز لیڈی لکھتی ہے کہ میں دلی میں انڈیا گیٹ پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایوننگ واکنگ کے اندر جب جاتی تھی اپنے ہاتھ میں ریولور لے کر کے جاتی تھی, اور ریولور اسی لیے لے کر کے جاتی تھی تاکہ مسلمان دھرم گرو, مسلمان پریسٹ عالم لوگ ان پر میں رحم کروں, اسی لیے میں ریولور لے کر کے جاتی تھی. پھر وہ لیڈی اپنی اسٹرک بک میں لکھتی ہے کہ آنے والے فیوچر میں کوئی سوال کرے گا کہ ریولور کے ذریعے سے کیسے رحم ہوتا ہے, وہ تو انسان کا جیون ختم کر دیتی ہے. وہ لیڈی لکھتی ہے کہ 1857 عیسوی کے اندر جن مسلم دھرم گروؤں نے, پرسٹ اور مولانا لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بڑوا کیا, بغاوت کی, وپلو کیا, ان عالموں کے پیٹ کو انگریز لوگ چیرتے تھے, زندہ چیرتے تھے, اور گرم گرم تانبا اور پیتل ان کے پیٹ کے اندر بھر دیتے تھے, اور ان کو زمین کے اوپر ایسے ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے تھے. یہ انگریز لیڈی لکھتی ہے. وہ بھوکے پیاسے گرمی میں دلی انڈیا گیٹ کے اوپر تڑپتے ہوئے ہوتے تھے سینکڑوں کی سنکھیا میں, کمیں ریولور لے کر کے جاتی تھی, ان کو گولی مار دیتی تھی تاکہ بیچارہ وہ تکلیف سے چھٹکارا پا جائے, اس طرح میں ان کے اوپر رحم کرتے تھے. یہ خود انگریزوں کے ڈاکیومنٹ سے میں آپ کو ریفرنس دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ 55,000 علماء کرام مسلم پرشت دھرم گروؤں کو انگریزوں نے 1857 کے اندر پھانسی کے اوپر لٹکایا تھا, اور پنڈت میوارام جی گپتا لکھتے ہیں کہ 500,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا تھا اس دیش کی آزادی کے واسطے. आगे आपको सुनाऊं 1866 के अंदर देवबंद का मदरसा कायम हुआ। ये देवबंद का मदरसा ये जो कायम हुआ उसको शुरू करने में बहुत सारे मकसद थे, उसके उद्देश्य थे कि देवबंद मदरसा क्यों शुरू किया जा रहा है। देवबंद मदरसे की हिस्ट्री छपी हुई है, देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि 1866 के अंदर देवबंद का जो मदरसा कायम हुआ उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन ये था कि भारत की आजादी के लिए यहां सूरवीरों को तैयार किया जाएगा जो इस मदरसे में रहकर के आजादी के लिए, देश के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए यहां उनको ट्रेन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और वो देश की आजादी के लिए जान देंगे। और हुआ भी ऐसा कि देवबंद मदरसे से जो लोग उस जमाने में स्टडी करके निकले, ग्रेजुएट होकर निकले, डिग्री लेकर के निकले, इन्होंने देश की आजादी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। आज मैं बहुत फखर से कहता हूं, मैं अपनी पुस्तिका लाया हूं, आप पढ़ लीजिए उसको, देवबंद मदरसे के फर्स्ट ऑफ स्कूल स्कॉलर जिन्होंने सबसे पहली डिग्री देवबंद मदरसे से ली उनका नाम है हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। खुदा की करोड़ रहमतें अल्लाह के उस बंदे पर नाजिल हो। उन्होंने देश की आजादी के लिए सिल्क पेपर मोमेंट चलाई थी, रेशमी रुमाल चरोड़ चलाई थी और 1916 के अंदर गद्दारों ने उनकी उस मोमेंट को अंग्रेजों को जासूसी कर दी और 1917 के अंदर हजरत शेखुल हिंद को अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ करके भारत से हजारों माइल दूर यूरोप में एक आयरलैंड है, टापू है, माल्टा में ले जा करके हजरत को कैद के अंदर डाला। ये 1917 की मैं बात कर रहा हूं। मैं आज बहुत यकीन से कहता हूं कि देश की आजादी के लिए हजारों किलोमीटर अगर किसी को दूर ले जाकर जेल में डाला गया हो तो देवबंद के पहले स्कॉलर हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। 3.5 साल माल्टा की जेल के अंदर रहे, फिर अंग्रेजों ने उनको छोड़ा तो 1920 के अंदर ये छूट करके भारत आए और उसी साल में हजरत का इंतकाल हो गया। मैं भारत सरकार को मुबारकबादी देता हूं कि 1916 में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो ये चरोड़ चली थी सिल्क पेपर मूवमेंट आजादी के लिए, जब उसके 100 साल पूरे हुए तो हमारी भारत सरकार के टपाल खातों इन्होंने हजरत की याद में टिकट भी बार पाई, 5 रुपए की टिकट शायद थी। आपको मालूम न हो तो जान लीजिए, हजरत की इस मोमेंट के जब 100 साल पूरे हुए तो भारत सरकार ने 5 रुपए की टिकट आपकी इस मोमेंट और चरवण की यादगिरी में शायद की। जब मौलाना महमूद हसन देवबंदी माल्टा की जेल में थे तो उनके साथ उनके स्टूडेंट वो भी देवबंद से डिग्री लिए हुए थे, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सईद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो सच्चे आले रसूल थे वो भी जेल में थे, उनकी याद में भी भारत सरकार ने 5 रुपए की टपाल टिकट बाहर पाई। ये वो आजादी के हीरो थे जिन्होंने एक तरफ धर्म की सेवा की तो साथ साथ में देश और मुल्क की भी सेवा की। आज हम खुशी से ये बात कहते हैं 1919 में जमीयत उलमाए हिंद कायम हुई और उसको इसीलिए कायम किया गया ताकि मुल्क की आजादी के अंदर खूब खूब आगे बढ़ करके एक प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। 1921 की बात सुन लो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती करना हराम है। ये ललकार लगाने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और आज भी वो हॉल मौजूद है। अंग्रेज जज हाईकोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, मौलाना मदनी के विरुद्ध के अंदर फरियाद है कि तुम ये कहते हो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। अदालत में खड़े हैं, आरोपी बनकर के। देश प्रेम इसको कहते हैं, देश की मोहब्बत इसको कहते हैं। अंग्रेज जज ने पूछा, हुसैन अहमद तुम कहते हो, फतवा देते हो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कहता हूं जब तक जिंदा रहूंगा वहां तक कहता रहूंगा। बाजू में मौलाना साहब अंग्रेज जज कहता है, हुसैन अहमद तुमको मालूम है तुम्हारी इस फतवे की सजा क्या होगी? तुम जानते हो कि अंग्रेजों के विरुद्ध में तुम फतवा दे रहे हो, इसकी सजा क्या होगी तुम जानते हो? मौलाना मदनी के गले के अंदर एक थैली लटक रही थी, उस थैली में से कफन का कपड़ा निकाला, अंग्रेज जज के टेबल पर रखा और कहा कि मुझे मालूम था कि मैं जो फतवा दे रहा हूं अंग्रेज की फौज में भर्ती करना हराम है, उसके बदले में मुझे फांसी की सजा दी जाएगी, इसीलिए देवबंद से कफन साथ लेकर के आया हूं ताकि यहां किसी को मेरे कफन को तलाश करने की जरूरत न पड़े। इसको देश प्रेम कहते हैं। ये हैं देश प्रेमी लोग जिन्होंने देश के लिए अंग्रेजों की अदालत में ऐसी ललकार लगाई। 1924 में आज खुल के सुन लीजिए कि मुकम्मल आजादी का ठहराव किसने पास किया है। मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं, इतिहास मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर किसी के साथ भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, जो कहूंगा प्रूफ से कहूंगा। देश की आजादी के लिए सबसे पहला ठहराव, मुकम्मल आजादी का ठहराव 1924 के अंदर जमीयत उलमाए हिंद ने कोकनाड के जलसे के अंदर किया और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है। मुकम्मल आजादी का ठहराव सबसे पहले 1924 में जमीयत उलमाए हिंद ने किया है और बाद में महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है। उसके बाद 1926 के अंदर 14 मार्च को कलकत्ता शहर के अंदर जमीयत उलमाए हिंद का अधिवेशन हुआ, तो उसमें दो बार जमीयत उलमाए हिंद ने अंग्रेजों के सामने आवाज लगाई, हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, हम मुकम्मल आजादी लेकर के रहेंगे। आज हम बहुत फखर से कहते हैं कि मुकम्मल आजादी की सबसे पहली मांगनी मुतालबा अगर किया हो तो जमीयत उलमाए हिंद ने किया है और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है। आप जानते हैं 1925 के अंदर असहकार आंदोलन चला। असहकार आंदोलन 1925 में जब शुरू हुआ तो देश में 925 बड़े बड़े मुफ्तियों ने एक फतवा लिखा और उसके ऊपर 925 मुफ्तियों ने सिग्नेचर किए कि असहकार आंदोलन हमारे देश में पूरी ताकत के साथ चलाया जाए। असहकार आंदोलन चलाना, उसको सपोर्ट करना, देश भर के 925 उलमाए किराम ने ये काम किया है। आइए 1930 में महात्मा गांधी जी की दांडी कूच। मैं आगे जो कहने जा रहा हूं, गुजरात सरकार ने एक चौपड़ी छापी है महात्मा जी की दांडी कूच के ऊपर, गुजरात सरकार के साहित्य विभाग ने छापी है, पेज नंबर 254 से लेकर 256 खोल करके देख लो, उसके अंदर महात्मा गांधी जी जब दांडी चलोड़ को लेकर के नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचे हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं 116 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, हमारे करीब के अंदर एक ब्राह्मण गांव है नवसारी जिले में, गांधी जी का रात वासा वहां था, रात को वहां रुके थे। तो उस वक्त के मदरसे के टीचर मौलाना लोग स्टूडेंट तालिबे इल्म लोग ये सब ब्राह्मण गांधी जी को मिलने के लिए गए और गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐसा पता चला कि आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक के ऊपर सॉल्ट पर टैक्स लगाने की पाबंदी की है, ये आपके नबी जी भी कहते हैं, मुझे ऐसा पता चला। तो जो मौलाना लोग गए थे उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल सही बात है, तो कहा जरा मुझे रेफरेंस के साथ लिख करके दो। तो ये लोग आए मदरसे में और आने के बाद इन्होंने मुलाकात की और इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा मोहम्मद अनवर शाहजाद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और जो है दूसरे लोगों ने वो रेफरेंस के साथ तैयारी की और दूसरे दिन ले जा करके महात्मा गांधी जी को वो हदीस पेश की जिसके जरिए से अंदर लिखा हुआ था कि नमक पर सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना ये इस्लामिक लॉ और शरीयत के अंदर गुनाह का काम है। जब वो हदीस महात्मा गांधी जी को पहुंची है तो दूसरे दिन नवसारी में दुधिया तड़ाव के मैदान में शाम को जाहिर सभा में महात्मा गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे डाभेल के आलिमों ने बतलाया कि इस्लामी लॉ के एतबार से भी नमक और सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना गुनाह है और उन्होंने मुझे फतवा लिख करके भेजा और जब उनका फतवा मुझे पहुंचा है तो गांधी जी के शब्द है कि मेरी चरवड़ को एक नई ताकत और नया जौम मिला है और वो गुजरात सरकार की लिखी हुई बुक में से ये बात मैं कह रहा हूं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल करमसद से आए और मेरी मातृभूमि बारडोली आए और सरदार वल्लभ भाई को हम बारडोली वालों ने सरदार का विरोध दिया और 1928 में सरदार वल्लभ भाई ने जब अंग्रेजों ने जो जमीन जब्त की थी उसके विरुद्ध के अंदर मोमेंट चलाई तो उस वक्त दाभेल मदरसे से एक फतवा गया जिसने सरदार वल्लभ भाई को सपोर्ट किया। बारडोली के पाटीदार समाज ने वो फतवा लिया और आज तक बारडोली स्वराज आश्रम के अंदर वो फतवा जैसा का वैसा मौजूद है। ये इतिहास की सच्चाई और हकीकत है। आखिर में 1942 की बात कर दो 1942 की कि 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया तहरीक चली तो उसमें आगे आगे मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से हारवी, मौलाना हुसैन अहमद बदली, मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद ये लोग आगे आगे थे भारत छोड़ो तहरीक के मौके के ऊपर। और कभी चांस मिले और टाइम मिले तो बैठकर सुन लेना कि जिस वक्त के ऊपर एक दो शब्दों में कह जाओ आपको रिसर्च की दावत देकर के जाओ कि 1947 के अंदर जब देश की आजादी हो रही थी और कुछ लोग पार्टीशन की बातें कर रहे थे कि देश के टुकड़े होने चाहिए तो देश के पार्टीशन का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो जमीयत उलमाए हिंद ने किया था। जमीयत उलमाए हिंद वो तंजीम और संस्था है कि जिसने देश के पार्टीशन को देश के टुकड़े को कभी मंजूर नहीं किया कभी कबूल नहीं किया। आखिरी रात तक जमीयत उलमाए हिंद ने विरोध किया था कि देश का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी दास्तान है। खैर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त फरमाया था, मौलाना आजाद की एक बात कहकर के मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। मौलाना आजाद ने यूं कहा था कि आसमान से कोई फरिश्ता आए, एंजल फरिश्ता आसमान से आ जावे और कुतुब मीनार पर खड़ा हो जावे और खड़े होकर के वो ऐलान करे کہ ہم تم کو دیش کی آزادی دیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ ہندو مسلم پارٹیشن ہو جائے, اس شرط پر دیش کی آزادی ہم تم کو دیں گے. تو مولانا آزاد نے دلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر آسمان سے انجل اور فرشتہ آ کر اعلان کرے قطب مینار پر کھڑے ہو کے دیوے کہ ہم دیش کی آزادی دیں گے لیکن پارٹیشن کے ساتھ, تو ہم اس فرشتے کو بھی کہیں گے کہ ایسی آزادی ہم کو نہیں چاہیے, ایسی آزادی لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ جس میں پارٹیشن ہوئے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گنگا اگر پوتر ہے تو ہم وہاں وضو کر کے جامع مسجد میں آ کر اذان دے کر کے نماز ادا کریں, یہ ہم چاہتے ہیں. اسی لیے میں اپنے شبد پھر دوہرا دیتا ہوں کہ آزادی کے 75 سال کے بعد اگر دیش میں قومی ایکتا ہو جائے, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب میں قومی ایکتا ہو جائے, تو اس فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے ورڈز کو نوٹ کر لو, دیش میں قومی ایکتا ہو جائے اور نیکسٹ آنے والے 15 سال میں پورے دیش میں ایک بھی کرمنل رائٹس نہ ہوئے, قومی فساد نہ ہوئے, تو 16 سال میں میرا بھارت دیش دنیا میں مہا ستہ بن جائے گا. دیش کو ضرورت ہے قومی ایکتا کی. سب مل جل کر کے کہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
علامہ اقبال جی کا کلام آپ نے بہت
دیکھو بھائی, دوسرے مسلمان الحمد للہ ہمارے اسٹیج پر آ چکے ہیں, تو میں ہماری نیشنل